जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय विष्णु पाप परमहंस परिरो आचार्य अष्टोत चेत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस कौन फाउंडर आचार्य बीबीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की, जय विष्णु पाद परमहंस परिराजकाचार्य अष्टोत चेत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की, जय श्री श्री राधा गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड श्री गिरी गोवर्धन की, श्री वृंदावन मथुरा धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री नवदीप मायापुर धाम की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, बताए गौर प्रेमानंदे, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक क्रमांक 40। सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्तया आत्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः सह व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः स व्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः। आत्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः सव्यापकतयात्मानं व्यतिरिक्ततयात्मनि विद्वान स्वप्न इवामर्श साक्षिणं विररामः। माताजी, स राजा मलयध्वज व्यापकतया सर्वव्यापी होने से आत्मानं परमात्मा को व्यतिरिक्ततया विभेद से आत्मनि अपने आप में विद्वान सुशिक्षित स्वप्ने स्वप्न में इव सदृश अमर्श ज्ञान साक्षिनम साक्षी विरराम उदासीन हो गया ह निश्चय ही। भाषांतर तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की आत्मा और परमात्मा में अंतर कर सकने के कारण राजा मलयध्वज ने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। आत्मा एक स्थानिक है जबकि परमात्मा सर्वव्यापी है। यह भौतिक देह आत्मा नहीं है अपितु आत्मा इस भौतिक देह का साक्षी है। उन्हें इसका पूरा पूरा ज्ञान हो गया। तात्पर्य, बद्ध जीव प्रायः भौतिक देह आत्मा तथा परमात्मा का अंतर समझने के प्रयास में निराश हो जाता है। मायावादी चिंतक दो प्रकार के हैं, बौद्ध दर्शन के अनुयायी तथा शंकर दर्शन के अनुयायी। बुद्ध के अनुयायी शरीर के परे कुछ भी नहीं मानते और शंकराचार्य के अनुयायी परमात्मा की पृथक सत्ता को नहीं मानते। शंकर मत के अनुयायी विश्वास करते हैं कि अंततः आत्मा और परमात्मा एक रूप है, किंतु वैष्णव चिंतक पूर्ण ज्ञानी होने के कारण इस शरीर को बहिरंगा शक्ति से बना मानता है और परमात्मा को प्रत्येक आत्मा के भीतर स्थित तथा इस प्रकार उससे भिन्न मानता है। जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवद गीता 13वां अध्याय 3रे श्लोक में कहा है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यज्ञानां मतं मम। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला हूँ, इस देह तथा इसके स्वामी को जानना ही ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। शरीर को क्षेत्र माना जाता है और आत्मा जीव को उस क्षेत्र में कार्य करने वाला, किंतु एक अन्य आत्मा भी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जो आत्मा के साथ रहकर केवल साक्षी बना रहता है। आत्मा जीव कार्य करता है और शरीर के फलों को भोग करता है, किंतु परमात्मा केवल आत्मा के कार्यों को देखता है, किंतु कर्म फलों का भोग नहीं करता। परमात्मा प्रत्येक कार्य क्षेत्र में वर्तमान है, किंतु आत्मा तो केवल अपने सीमित शरीर में रहता है। राजा मलयध्वज को ज्ञान की यह पूर्णता प्राप्त थी। वह आत्मा परमात्मा तथा भौतिक देह में अंतर करने में सक्षम था। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेयं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णभक्तान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवों से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं ऐसे महान विषय के ऊपर कुछ चर्चा कर पाए जो कि परंपरा में हो और सब वैष्णवों को प्रसन्न कर पाए। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे स्कंद 4 अध्याय 28 श्लोक क्रमांक 40। अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति। तो हम यहाँ पे आज के श्लोक में पढ़े हैं कि किस तरह से जो राजा मलयध्वज है उन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। और ये पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है कि उन्होंने वो अंतर जान लिया, क्या है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में शुरुआत में ही बोलते हैं कि बद्ध जीव शुरुआत से ही प्रायः क्या करता है, भौतिक देह आत्मा तथा परमात्मा का अंतर समझने के प्रयास में निराश हो जाता है। तो जीवन का जो मनुष्य जीवन उसका सार्थक यही होगा कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ये समझना है कि ब्रह्म मतलब क्या है, कि पहले तो वो समझ ले कि वो क्या है, कि वो आत्मा है, और बाद में वो परमात्मा के बारे में जान पाए और अंततगत्व भगवान के बारे में और उसके संबंध में के बारे में। तो अभी हाल ही में इतने बड़े फेस्टिवल्स होके गए, मंदिर में जन्माष्टमी है, ये श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव। तो हम ये सब सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, उसको हम मना रहे हैं। तो विशेषतः इस जन्माष्टमी में हमारा एक थोड़ा सेवा था, जब कुछ तो डिस्कवर योरसेल्फ का स्टॉल लगाए थे, तो वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे। और वो आजकल ऐसा देखा जाता है कि लोग सुनना नहीं चाहते, लोग सुनाना चाहते, लेकिन तो वो सुनाना चाहते मतलब पूरा डिटेल में कि ऐसा हुआ था, हमारा झगड़ा ऐसा चालू हुआ था, वो झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुआ था। मतलब ऐसा व्यक्ति की इच्छा रहती है कि वो दुखी है लेकिन वो सुनाना चाहता है, लेकिन सुनना नहीं चाहता है ना बहुत बार। और समस्या ऐसी है कि हर एक का अपना अपना फिलोसॉफी है, जो भी आते हैं वो ऐसा बोलते कि मेरे अनुसार ऐसा है, ये मेरा मत है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे कि कृष्ण बता रहे ये मेरा मत है, क्षेत्रत्नम चापि माम विद्धि सर्वभूत है, तो कृष्ण बता रहे कि मेरा मत है, लेकिन इस जीव ऐसा है कि वो भी बताता है मेरा मत ऐसा है ना। क्योंकि आध्यात्मिकता ऐसी चीज है कि उसके बारे में हर एक को अपना अपना मत हो सकता है, ऐसा उनको लगता है सबको। तो उसमें कुछ गलती नहीं है, लेकिन गलत भी है, क्योंकि आजकल का जो शिक्षण प्रणाली उसमें बस इतना ही सिखाया जाता है कि आप क्या करते रहो, बस है ना, ज्यादा सोचो मत, जो भी है जीते रहो। तो एक स्टॉल पे आए थे, मतलब लड़का और लड़की आए थे, तो मित्र रहेंगे, तो वो बोल रहे थे कि हम एक्टर है, एक्टिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं बोला कि स्ट्रगलिंग एक्टर है क्या, है कि नहीं? तो हाँ हाँ स्ट्रगलिंग एक्टर है। मतलब अभी बता रहे थे, उसमें से वो लड़का बता रहा था कि मैं सब कर चुका हूँ और भी बहुत कुछ करने की इच्छा है, जीवन को जीना है ना, किधर रुकना नहीं है। वो बोला ऐसे रुकेंगे नहीं तो उसका फायदा क्या होगा, है ना। जिस तरह से पानी अगर उसको अच्छी तरह से चैनलाइज नहीं किया गया तो अतिरिक्त पानी का क्या हो जाता है, देखा है हमने, बाढ़ आ जाता है ना, वो किसी के उपयोग में आता है बल्कि विनाशकारी बन जाता है। तो इसी तरह से मनुष्य जीवन ये मिला है तो एक ही चीज के लिए मिला है, जानने के लिए, कि आत्म साक्षात्कार करना है, जानना है। कोर्स का भले ही नाम डिस्कवर योरसेल्फ है, लेकिन उसके लिए किसी की मदद की जरूरत है, खुद के स्तर पे हम ये कर नहीं सकते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि जो महत्वपूर्ण ज्ञान जानना है, ज्ञान मतलब क्या है, ज्ञान पूर्ण ज्ञान होना, मतलब ऐसा चीज नहीं कि सारे श्लोक पता है, मतलब रट चुके हैं और वो सारे श्लोकों के साथ क्या कर पा रहे, बता पा रहे संस्कृत वगैरह, लेकिन क्या है ये जानना है कि क्या है व्यक्ति, क्या है वो शरीर नहीं है, है ना, वो क्या है आत्मा है। आजकल लोग भूल चुके हैं वो शरीर भी है, कम से कम अगर बोलेंगे कि वो आत्मा है तो वो बहुत दूर की बात हो रहा है। आजकल लोगों को यही पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, शरीर है। तो और एक स्टॉल लगाया था, जैसे तोशन दिमाग प्रोन लगाया था आहार विज्ञान के बारे में, तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे वो जानने के लिए कि किस तरह से आहार होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो अंत तक तो वो तो जानना चाहिए कि सत्वगुण में आना चाहिए, प्रसाद लेना चाहिए, वो इस तरह से। तो ये भी लोगों को आज को पता नहीं कि किस तरह से क्या खाना चाहिए, बाकी तो फिर आत्मा परमात्मा है वो। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें क्या करना चाहिए, जानना चाहिए कि हम कौन है, आत्मा है। अगर ये जान लेंगे कि हम आत्मा है तो बहुत सारा जो स्ट्रगल है जीवन में, जो भी चिंता है, वो कम हो जाती है। और उसके आगे अगर कोई व्यक्ति जान लेगा कि वो परमात्मा है, बस हो गया, मतलब कि हृदय में उनके परमात्मा भी है, भगवान वो क्या कर रहे हैं, साक्षी है। इस तरह से प्रभुपाद बता रहे उस श्लोक के बारे में कि कृष्ण बताते भगवद्गीता में, क्षेत्रतम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र यो ज्ञानम यज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तुम जान लो कि मैं समस्त देहों को जानने वाला हूं, इस देह तथा इसके स्वामी को जानना ही ज्ञान है। ऐसा मेरा मत है। तो कोई अगर कम से कम बोलिया कि मुझे अपने शरीर के बारे में जानकारी है, तो खुद के क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं ऐसा है। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही क्षेत्र के भी नहीं जान रहा हूं, मैं सभी के बारे में जानकार रखने वाला हूं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति क्या जाने, परमात्मा के स्वरूप को जान ले तो एक जीवन में बहुत सुख प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से हम एक देख सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर कथा है कि जो कर्नाटक राज्य में एक बहुत बड़े संत होकर गए कनकदास, तो इनके जीवन में हुआ था। तो ये जो अगर हम थोड़ा सा पार्श्वभूमि जान लेंगे, ये कनक दास पहले तो कनक वो क्या कर रहे थे, एक भेड़ चराने वाले, मतलब शेपर्ड, ऐसे भेड़ चराने वाले एक मतलब राजा थे वो, उनके पिताजी मतलब पूरा भेड़ चराने वाले का समूह रहता है, उनके वो क्या थे, राजा थे उनके पिताजी। तो इसी के लिए वो भी एक तरह से राजा ही थे। और उनका जब शादी हो रहा था तो उसी शादी के समय पे उनके जो शत्रु है उन्होंने उनका आक्रमण किया था, उन्होंने सबको मार दिया लेकिन कनक को जिंदा रखा। तो ये कनक देख रहे कि सबको मार के, वो बोलते कि डिसऑनर मतलब क्या है, जो अच्छा जो मतलब कि अगर किसी को मार देने से अच्छा है कि उसको क्या करे, अपमानित करके रखे। तो आपको मैं आप अपमानित करके जा रहे हैं कि आप किसको भी बचा नहीं पाए, पूरे इस राज्य को नहीं बचा पाए, हम आपको लूट के जा रहे हैं, यहां तक कि आप अपने होने वाली पत्नी को नहीं बचा पाए, अपने परिवार को नहीं बचा पाए। तो ये कनक बहुत प्रार्थना कर रहे थे, हे वेंकटेश, हे श्रीनिवासा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना, वाई बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, है ना, बहुत बार लोग कि क्या हुआ ऐसा, कैसा, क्या क्या गलती हुआ। और दूसरा चीज है, ये सब देखने के लिए मैं क्यों जिंदा हूं, मुझे क्यों नहीं मारा। तो वहां पे उस वक्त श्रीनिवास बात करते हैं, बोलते हैं, वेंकटेश बोलते हैं, हे कनक, तुम मेरे क्या हो, नित्य सेवक हो, तुम्हारा जन्म मेरी सेवा के लिए हुआ है। तुम्हारा जब जन्म के समय तुम्हारे माता पिता ने प्रार्थना किया था कि अगर हमें पुत्र प्राप्ति होगा तो क्या करेंगे, हम आपको वो क्या करेंगे, ये सेवा के लिए ना उसको समर्पित कर देंगे, है ना। तो एक बार ऐसे हुआ था, जो बालाजी में एक बार एक बच्चे जन्म लिया था, तो उस बच्चे को बोल रहे थे कि मतलब उसके हाथ में अंगूठी दिया था, और उस बच्चे को मतलब ऐसे कर रहे थे कि वो बच्चा अंगूठी कहाँ डाले, जो दान पात्र में डाले। अभी वहां का दान पात्र मतलब बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि बहुत हजारों भक्त आते रहते हैं। तो वो छोटे बच्चे का उसका हाथ नहीं जा रहा था, तो ऐसे उसको डाल रहे थे, तब तो क्या वो बच्चा ही गिर गया था वो दान पात्र में। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि लेकिन वापस बोले, नहीं नहीं अंगूठी ले लीजिए लेकिन बच्चे को वापस दे दीजिए। तो ये माता पिता ने बोला कि ठीक है, हम उसको सेवा में लगाएंगे, लेकिन अभी बच्चा है, अभी नहीं करेंगे, बाद में, है ना, थोड़ा बड़ा होने देंगे फिर ऐसे। तो ऐसा होता है भगवान की सेवा में, है ना, सबसे बड़ी जो आसक्ति रहता है उसको देने के लिए बहुत समस्या रहता है। वो भक्ति कर रहे थे लेकिन उनका जो वचन था वो पूरा नहीं करवा रहे थे। तो श्रीनिवास बोल रहे थे कि अभी मेरी इच्छा है कि आप पूरी तरह से क्या कीजिए, मेरी भक्ति में लगे रहिए। और स्वयं भगवान ने उनको ये दिया था, आदेश दिया था कि आप कहाँ जाइए, यहाँ पे जा जो उड़पी वहाँ जाइए, वहाँ भी व्यास तीर्थ है ना। अगर हम पढ़ेंगे तो भगवद्गीता की शुरुआत में गुरु परंपरा दिया है, तो उसमें व्यास तीर्थ जी का नाम है। तो बताते कि व्यास तीर्थ जी के पास जाइए और उनसे आप क्या कीजिए, उनके आप शिष्य बन जाइए और उनके आदेश के अनुसार भक्ति करते रहिए। देखिए स्वयं भगवान ने उनको आदेश दिया है। तो व्यास तीर्थ जी के पास आते हैं, तो अभी देखा उस वक्त ऐसा हो गया कि व्यास तीर्थ के बहुत सारे जो शिष्य है, या सिर्फ मतलब बहुत सारे नहीं, सभी शिष्य वो सब क्या थे, ब्राह्मण कुल से थे। और ये जो कनक है,
जिनको बाद में कनकदास ये नाम दिया गया उन व्यासतीर्थ जी ने, तो ये बहुत प्रेम करते थे व्यासतीर्थ। तो ये सब सोच रहे थे ये क्या है, हमारे गुरुवर्य क्या है एक शूद्र को इतना महत्व दे रहे, क्या है एक शूद्र को महत्व दे रहे, है ना। हम तो ब्राह्मण कुल से, तो बहुत बार चर्चा करते, कनक को बोलते हैं कि अरे तुम्हें सामवेद का ये श्लोक आते हैं क्या, तुम्हें अथर्ववेद के ये श्लोक आते हैं क्या। तो कनक बोलते थे नहीं आते हैं। अरे तो इस तरह से बहुत ऐसा हो रहा था। तो ये सब मठ में जो हो रहा है ये सुनकर व्यासतीर्थ जी को पता चला। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही एकादशी का दिन था जैसे आज एकादशी, तो उन्होंने सबको अपने महत्वपूर्ण शिष्यों को बुलाया और वो बोले कनक को ही बुलाओ, कनकदास को। और उनको बुलाने के बाद सबको बोले कि ठीक है मेरी एक इच्छा है कि आप मेरे को, मैं एक विशेष प्रसाद दे रहा हूँ, केला प्रसाद, है ना। ये केला है मैं आप सबको दे रहा हूँ, आप क्या कीजिए इस केले को क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए। जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, जय श्री श्री गौर निताय की, श्री गोपाल की। तो वो बोले कि ये केला है, ये केला लीजिए और क्या कीजिए आज एकादशी का एक अवसर पर आप उसको ग्रहण कीजिए, लेकिन स्टार्स एंड कंडीशंस अप्लाइड कि ये करते वक्त आपको कोई भी देखना नहीं चाहिए। तो सब बोले यस ठीक है जैसी गुरु महाराज की इच्छा। तो सबको केला दिया गया, सब चले गए। दूसरे दिन व्यासतीर्थ जी ने सबको बुलाया था, तो एक एक को पूछा कि क्या किया आपने, केला ग्रहण किया क्या। तो वहां पे एक थे भीष्माचार्य करके नाम था उनका, तो भीष्माचार्य को बोल के बोले क्या किया आपने केला क्या किया। बोले गुरु महाराज मैंने वह केला लिया और केला लेकर अल्टर के पीछे चला गया, है ना, देख रहा था कोई नहीं है, है ना, और मतलब भगवान के जो गर्भगृह है उसके पीछे जाकर कोई नहीं देखकर मैंने क्या किया, वो आपने दिया हुआ केला खाया। तो हरि बोल। बोले ठीक है। दूसरे को पूछा आपने क्या किया। बोला मैं क्या किया, मैं सरोवर में नहाने गया था, तो सरोवर में नहाते नहाते मैं क्या किया केला गया और उसको पानी के नीचे खा लिया। बोले अरे वाह ये तो महान है, पानी के नीचे आपने केला खाया, है ना। और एक जन तीसरे और बोला आपका आपने आपने क्या किया। बोले मैं जंगल में अंदर अंदर चला गया और एक गुफा के अंदर देखा कि कोई नहीं था, तो उस गुफा में जाकर क्या किया केला खाया। तो इस तरह से तो सबने अपने अपने बताया कि किस तरह से उन्होंने केला खाया और किसी ने देखा नहीं। तो ये जो कनकदास है तो फिर अंत में पूछा आपका क्या हुआ। तो कनक बोले गुरु महाराज कृपया माफ कर दीजिए, मैं आपका आदेश पूरा नहीं कर पाया। बोले क्या हो गया। बोले मैं केला खा नहीं पाया। तो सब लोग बोले देखिए देखिए गुरु की आज्ञा का अवज्ञा मतलब आदेश नहीं पालन कर रहे हैं। तो बोले कैसे क्या। बोले मैं देखा कि एक जगह पे देखा कोई नहीं है, तो मैं केला खाने का सोच रहा था, लेकिन देखा कोई तो ना पक्षी है ना कोई जानवर है वो देख रहे ऐसा लगा, तो मैं सोचा कि जंगल में चला जाऊं। फिर भी जंगल में जाकर देखा कोई पशु पक्षी नहीं था इतना, लेकिन वहां पे पेड़ देखे इतने सारे पेड़ है, तो सोचा कि अरे पेड़ में पशु पक्षी में सब में क्या है ना आत्मा है, और उसके साथ में क्या है स्वयं भगवान सर्वव्यापी ऐसे परमात्मा स्वरूप है। तो फिर मैं पूरे एक अंदर जाकर वहां पे पर्वत पे जाकर वहां पे गुफा में चला गया, तो वहां पे कोई नहीं था पूरा अंधेरा था, लेकिन देखा कि वहां पे भी कुछ छोटे कीटक है वगैरह है, उनके हृदय में भी कौन है परमात्मा है। अगर मैं समझ लूं कि अगर कीटक भी नहीं देख पा रहे लेकिन क्या करे, मेरे स्वयं के हृदय में कौन है स्वयं भगवान परमात्मा के रूप में है, और ये परमात्मा के रूप में स्वयं भगवान साक्षी है और मेरी हर एक कार्य को क्या कर रहे देख रहे, तो मैं इस अवस्था में कैसे मतलब केला खा सकता हूं, तो कृपया माफ कर दीजिए। तो उस वक्त सबको समझ आया कि किस तरह से कनकदास कितने महान भक्त जो क्या कर रहे थे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे, किस तरह से एक व्यक्ति जब भक्ति में उन्नत हो जाता है और शुद्ध भक्ति के लक्षण में होते हैं, उसमें क्या करता है वो देखता है क्या है, हर एक के हृदय में या फिर स्वयं के हृदय में किसको देखता है, आत्मा को भी देखता है और उसके साथ परमात्मा को भी देखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है परमात्मा का ज्ञान होना। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा के बारे में ज्ञान को जान लेगा तो पाप नहीं करेगा, है ना। जो व्यक्ति पापी रहता है उसको लगता है कि अरे मैं तो पाप कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा है ना। जिस तरह से बिल्ली रहता है वो क्या करता है, दूध पीता है, लेकिन अगर हम देखेंगे वो दूध जब कैसे पीता है कि आंखें बंद करके पीता है, उसको लगता है कि अरे कोई नहीं देख रहा है और मैं भी नहीं देख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना। तो उसी तरह से जो कोई अगर देखे अपने हर एक कार्य के पीछे, है ना, एक तो परमात्मा मतलब वो क्या कर रहे हैं, साक्षी है। तो बहुत बार लोग बोलेंगे सुनेंगे कि अरे ये सब भगवान हमसे करवा रहे, ये तो भगवान की इच्छा है ना। ऐसा नहीं है, परमात्मा क्या है, साक्षी रूप में वो क्या कर रहे हैं, वो बस देख रहे हैं। हम जो भी हमारे जीवन में अनुभव कर रहे हैं वो सारे क्या है, हमारे कर्मों के साथ जो आदान प्रदान हुआ है उसका अनुभव ले रहे हैं, कर्म और उसके आने वाली प्रतिक्रियाएं, है ना। भगवान बहुत बार जो शुद्ध भक्त रहते या फिर हमेशा शुद्ध भक्तों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रितः। लेकिन जो भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं है तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते, तो वहां पे वो सिर्फ साक्षी रहते, वो देखते रहते हैं। लेकिन अगर कोई भगवान के समीप जाना चाहता है, इच्छा करता है, तो फिर परमात्मा क्या करते हैं, वो उस तरह से सहायता या फैसिलिटीज देते हैं जिसकी तरह भक्ति में लग सकता है। तो इस जीवन में हम देखते हैं कि जो सारे जीवात्मा या मनुष्य चार चीजों में लगा है, जो महाभारत में हम सुनते हैं, वो क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेहत पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिक विशेषो धर्मे न ही न पशु भी समान। तो ये सामान्य है या समान है चार चीजें सारी जीवात्मा में और मनुष्य में भी, वो क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम च। तो हम देखेंगे कि व्यक्ति या फिर कोई भी जीव आहार निद्रा या मैथुन इसमें ज्यादा समय नहीं डालता है, लेकिन सबसे ज्यादा समय या फिर जो 24 घंटा या पूरा जिंदगी भर वो किससे व्याप्त रहता है, भय से व्याप्त रहता है। तो हम इस भय के बारे में क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि अगर कोई परमात्मा के बारे में ज्ञान को समझ लेगा तो उसको वो क्या नहीं होगा, भय से मतलब प्रादुर्भावित नहीं होगा, भय उसको सताएगा नहीं। क्योंकि अगर हम देखेंगे भगवत गीता के 16वें अध्याय में, है ना, आसुरी तथा दैवी गुण, तो उसमें पहले श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण बताते अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही ज्ञानम तमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तपस आर्जवम। तो इस तरह से बहुत सुंदर गुण बताते दैवी गुण क्या है। तो इस दैवी गुण में शुरुआत में ही भगवान दैवी गुण का एक ये बताते कि दैवी गुण होंगे तो क्या होगा, अभयम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अभय। और उस अभय के बारे में बताते वक्त श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर बताते हैं। तो बताते हैं कि किस तरह से एक सन्यासी को अभय रहना चाहिए। वो बोलते हैं कि अगर भगवान की कृपा की एकमात्र आश्रय है तो उसको क्या करना चाहिए, सन्यास लेना चाहिए। जो यह सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे सन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कृष्ण या अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा सदैव अंतर में रहते हैं, वे सब कुछ देखते रहते हैं और जानते हैं कि कोई क्या करना चाहता है। इस तरह मनुष्य को दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा स्वरूप कृष्ण शरणागत व्यक्ति की रक्षा करेंगे। उसे सोचना चाहिए मैं कभी अकेला नहीं हूं, भले ही मैं गहनतम जंगल में क्यों न रहूं, मेरा साथ कृष्ण देंगे और सब तरह से मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा विश्वास अभयम या निर्भयता कहलाता है। सन्यास आश्रम में व्यक्ति की ऐसी मनोदशा आवश्यक है। तो ये अभयता निर्भयता तो प्रभुपाद यहां भी विशेष रूप से सन्यास आश्रम के लिए बता रहे, वो तो है जरूरी, लेकिन इस अभयता का जो देखना है वो सिर्फ सन्यासी के लिए नहीं, अगर कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बनना चाहता है तो ये सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको क्या होना चाहिए, भगवान मेरी हमेशा क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, है ना। और ये विश्वास के साथ वो क्या कर सकता है, भक्ति करेगा तो क्या वो कृष्ण भावना भावित बन सकता है। तो हम देखते हैं कि जैसे अभी कुछ समय पहले बहुत सारे भक्त कांचीपुरम जाकर आए, है ना, विशेष करके इसके लिए जाकर आए कि 40 साल में जो दर्शन होता है किनका, श्री वरदराज जी का, आदि वरदराज। तो इस कांचीपुरम में बहुत सुंदर कथा हुआ था, है ना। वहां पे एक भगवान के शुद्ध भक्त रहते थे, कुरेश। तो कुरेश मतलब क्या है, कुरा, कुरा मतलब क्या है, बहुत बड़ा जमीन ऐसा बोलते, कुरा को क्या बोलते, जमीन। और ईश मतलब क्या है, उसके उसके मालिक या फिर उसके स्वामी। तो इस तरह से कुरेश मतलब क्या है, वो बहुत बड़े जमींदार और उनके पास बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी और उनकी पत्नी थी अंडाल। तो ये जो कांचीपुरम में जब वो आदि वरदराज की सेवा कर रहे थे कांचीपूर्ण, तो कांचीपूर्ण के साथ वरदराज बात करते थे और लक्ष्मी जी भी बात करते थे। तो लक्ष्मी जी एक बार बात कर रही थी, बोल रही थी शाम को ये कौन सा आवाज आता है, क्रर, ऐसा आवाज आता था, मतलब एक दरवाजा बंद होने का आवाज आ रहा था। तो ये लक्ष्मी जी पूछ रही थी, हे कांचीपूर्ण, ये कौन सा दरवाजा बंद हो रहा है, या फिर मैं हर रोज सुबह सुनती हूँ ये दरवाजा खुल रहा है, तो ये दरवाजा बंद होता है, खुलता है, ये किसका आवाज आ रहा है। तो कांचीपूर्ण बोल रहे थे, ये दरवाजा जो है ये किसका है, कुरेश, उनका एक बहुत बड़ा ऐसा महल है, उसका एक बहुत बड़ा दरवाजा है, वो खुलता है हर रोज सुबह से ही खुलता है, किसके लिए, तो जो भी जिनको जरूरत है वो सारे कहाँ पे आते हैं, कुरेश के पास आते हैं। और कुरेश और उसकी पत्नी अंडाल वो क्या करते हैं, सारे भक्तों की सेवा करते थे, इतना दान देते हैं कि वो जब तक अंत तक कोई नहीं रहेगा तब तक वो प्रतीक्षा करते हैं, और जब कोई नहीं रहेगा तो दरवाजा बंद करते हैं। इस तरह से हर रोज हजारों हजारों लोग आते हैं, भक्तगण आते हैं और उनसे क्या करते हैं, सहायता प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्मी जी सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, बोले मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं कुरेश से मिलना चाहती हूँ, कृपया आप दोनों को क्या कीजिए, बुलाइए। तो कांचीपूर्ण स्वयं गए और बताने लगे, कुरेश आपके भक्ति से और आपके इस दान से क्या है, लक्ष्मी जी इतना प्रसन्न हुई है, आप इतना दान दे रहे हो तो लक्ष्मी जी आपसे मिलना चाहती है। अभी देखिए अगर किसी के ऐसे किसी के साथ हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, अरे मैं आ रहा हूं, है ना। लेकिन देखिए कुरेश जी का मतलब उनका कैसा भाव, वो बोले क्या है ना, मेरा दान देना ये एक ऐसा हो गया कि जिस तरह से मैं क्या चाहता हूं उससे, मेरा दान देना मतलब एक प्रतिष्ठा का लक्षण बन गया अभी, है ना। देखिए वो जानबूझकर नहीं कर रहे थे, वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए दान नहीं दे रहे थे, है ना। बहुत बार व्यक्ति दान देता है, ठीक है, भगवान के सेवा के लिए दान देता है, लेकिन बोलता है कि रिसीट बुक में मेरा नाम है कि नहीं, या फिर SMS मैसेज में मेरा नाम आता है कि नहीं, उस तरह से प्रतिष्ठा के पीछे लगते हैं, या फिर रहता है कि किस तरह से हमारा नाम आना चाहिए। लेकिन कुरेश बोले ये दान देना इसकी वजह से मेरा नाम, और लक्ष्मी जी स्वयं हमारी माँ है और उनके सामने मैं कौन हूं, है ना। अरे वो तो स्वयं भगवान के सेवा है और उनसे ही प्राप्त हुआ है, मैं बस सेवा में लग रहे। तो बोले ये अच्छी बात नहीं है, हम क्या कर रहे। उन्होंने अपने पत्नी को बुलाया और बोले कि आज ही दोपहर में हम सब चीज सब क्या करेंगे, ये करेंगे, दान दे देंगे और सामान्य वस्त्र धारण करके कहां जाएंगे, हम श्रीरंगम जाएंगे और अपने जो गुरुवर है श्री रामानुजाचार्य उनकी सेवा में लगे रहेंगे, अभी यहां पर रुकना ना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने दोपहर तक ही सारा क्या कर दिया, अपना सारा धन संपत्ति उसका दान दे दिया, अपना महल तक को दान दिया, सब दान दे दिया। कोई बोल सकता है अरे ये तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की सेवा में ही लग रहे हैं। लेकिन शुद्ध भक्तों का एक विशेष लक्षण रहता है कि वो क्या करते हैं कि पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, पूरी तरह से। वो किसी भी रूप से क्या नहीं चाहते, थोड़ा भी हृदय को प्रदूषित होना नहीं चाहते। तो उन्होंने बस सामान्य वस्त्र धारण किए और पत्नी को बोले कि देखो अभी कुछ नहीं लेना है, चलते रहो। अभी जंगल से जा रहे थे, तो जंगल से जब जा रहे थे तो उनकी पत्नी अंडाल वो बोल रही थी कि मुझे थोड़ा भय लग रहा है। बोले क्यों भय लग रहा है? बोले मैंने बोला था कुछ नहीं लेके आने के लिए, जिसके पास धन संपत्ति रहेगा उसके पास, उसको ही भय लगेगा, बाकी किसी को भय नहीं लग सकता है। भय किसको लगता है? जिसका जाने का डर है। जिसके पास कुछ जाने का डर नहीं उसको क्या भय लगेगा? इसका मतलब आपके पास कुछ तो है जिसका आपको भय लग रहा है कि वो जाएगा। तो बता रही थी मैंने बोला था कुछ नहीं लेके आने के लिए। देखिए अभी उनकी पत्नी भी पूरी तरह से उनको समर्पित है ना। प्रभुपाद जी की देखिए उनके जीवन में उनको बोला था कि मतलब इस तरह से नहीं था, लेकिन वो था कि प्रभुपाद ने पूछा था कि आपको क्या चाहिए, टी या मी, मतलब चाय चाहिए या मैं चाहिए। तो उनकी पत्नी ने ऐसे ही ऐसे बोला था कि नहीं मुझे चाय चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे जो कुरेश की पत्नी है वो बोल सकती थी अरे आपको जाना है सब छोड़ के तो जा सकते हो, मैं थोड़ा संभाल के रहूंगी। नहीं, जैसे ही पति ने बोला उस तरह से उन्होंने भी सब छोड़ के जा रहे थे। उन्होंने एक अलंकार को भी धारण नहीं किया था खुद के साथ, एक सोने का अलंकार भी धारण नहीं किया था। तो ये बोल रहे आपको भय क्यों आ रहा है? तो देखिए उनकी पत्नी क्या बोल रही है, देखिए मैं कुछ तो नहीं लेके जा रहा हूं लेकिन एक मेरे पास सोने का बाउल, मतलब सोने का एक पात्र है छोटा सा, वो भी लेके जा रहे हूं किसके लिए, आपको खाना परोसने के लिए, है ना। सिर्फ पति की सेवा करने के लिए एक सोने का पात्र लेके जा रहे थे। तो बोले वो मेरे पास बस इतना ही है। तो बोले इसको आप जंगल में बहुत दूर तक फेंको, है ना। तो जैसे उन्होंने किया, फिर उन्होंने कुछ समय चलने के बाद पूछा तो आपके आपको भय लग रहा है? तो बोले नहीं, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जिस तरह से अभयम, मतलब है ना, जब कोई परमात्मा के या भगवान के ना जो साक्षात्कार कर लेता है कि भगवान है और हमारा क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे, तो अभय प्राप्त कर लेता है। वो ज्यादा जीवन में ज्यादा इतना कष्ट नहीं करेगा। ऐसा अभी देखिए इतने कष्ट में व्यक्ति लग जाता है कि क्या हो जाता है, कृष्ण भावनामृत, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो वो कॉन्शियस रहता है लेकिन वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं रहता, है ना। अगर बहुत सारे चीजों में उसका मन व्यस्त रहेगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा, भगवान के बारे में सोच नहीं पाएगा, और ऐसा हो जाता है। तो यही कुरेश देखिए क्या कर रहे थे, ये सब छोड़कर कहाँ गए थे, श्रीरंगम में, और वहां पे जाके क्या करते थे, मधुकरी करते थे। और ये किस तरह से, वो क्यों मधुकरी करते थे, क्योंकि उन्होंने एक बार रामानुजाचार्य उनके जो गुरु है उनको पूछा ये जो भगवत गीता है उसका मर्म क्या है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता, इसी भगवत गीता क्या है। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि आप क्या करो सर्वधर्म, तो कुरेश बता पूछ रहे थे अभी इतने सारे, वो बहुत बड़े विद्वान है लेकिन वो पूछ रहे हैं अपने गुरु को कि ये थोड़ा समझा कर बताएंगे कि किस तरह समझना है। तो बता रहे थे कुरेश को ठीक है आप ऐसा करो, आप और आपकी जो पत्नी है वो क्या कीजिए, हर रोज मधुकरी कीजिए। क्या करना है, मधुकरी करना है, मतलब भगवान, मतलब पूरे भगवान के भरोसे रहना है। तो एक महीने तक पूरा घर में भिक्षा मांग मांग कर वो क्या कर रहे थे, अपने जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो एक महीने के बाद फिर उन्होंने क्या किया, जो कुरेश है और अंडाल उनको बताया इस श्लोक का महत्वपूर्ण अर्थ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ श्लोक का अर्थ बताने से नहीं होता है, उसको क्या होता है, हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित होना चाहिए। और सिर्फ कब होता है, जब गुरु की कृपा होती है, यही हम गुरु पूजा में गाते हैं। तो जब से रामानुचार्य प्रसन्न हो गए उनकी सेवा से तो उनको उस श्लोक का अर्थ पता रहता है। तो उस श्लोक में हम देखते हैं कि मा शुचः, मतलब आप डरो मत, आप भयभीत मत हो जाओ, क्योंकि इस दुनिया में सारे जीवात्मा भयभीत है, लेकिन जब कोई भगवान के शरण में शरण लेता है वो क्या होता है, भयभीत नहीं रहता है, क्योंकि उसको कुछ चिंता ही नहीं है, भगवान मेरा ख्याल रखेंगे, और भगवान उसका वो बोलते भी है कि क्या है, मैं क्या करूंगा, जो भी भक्तों के लिए जरूरी है वो मैं दूंगा, उसके लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो वो सुनकर दाशरथ ही है ना, उनके और एक शिष्य, अभी देखिए एक एक गृहस्थ, अभी दूसरे है सन्यासी, तो वो पूछते हैं कि ये आपने उस श्लोक का अर्थ मुझे भी बताइए। तो रामानुचार्य बोलते ठीक है, आप क्या कीजिए, गोष्ठीपूर्ण मेरे जो गुरु है उनके पास जाइए और उनकी सेवा कीजिए। तो ये गोष्ठीपूर्ण के पास जब आए तो उनको गोष्ठीपूर्ण ने उनके जो गुरु उन्होंने क्या उसके लिए बोले कि अरे मेरे घर मेरे जो एक ये है बहन है उनके घर में समस्या चल रही है, उनके घर में सेवा करने के लिए कोई नहीं है, पानी भरने के लिए कोई नहीं है, तो देखिए तो आप बोले कृपया उनको मदद कीजिए। तो एक सन्यासी को कहाँ पे कौन सी सेवा मिले, लाइक बहुत ही मेनियल सेवा, मतलब ऐसा सेवा दिया गया, लेकिन वो सेवा करने के लिए गए और सेवा कुछ महीने करने के बाद वापस जब आए तो गोष्ठीपूर्ण ने ऐसा नहीं बोला कि चलो मैं आपको अर्थ बताता हूँ, बोले आप वापस रामानुचार्य के पास जाइए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ बस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जब वापस रामानुचार्य के पास आए तो रामानुचार्य ने उनको क्या किया उसके बारे में पूरा तत्वतः बता रहे थे। तो ये जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें जीवन में हम देख सकते हैं कि ज्ञान जो है वो प्राप्त किया नहीं जा सकता, मतलब खुद के स्तर पे उसको दिया जाता है ना। आध्यात्मिक ज्ञान जो क्या रहता है वो बस गुरु प्रसन्न हो गए तो क्या होता है, स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और जो परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं तो बस आत्मा क्या है, सच्चिदानंद है, पूर्ण ज्ञान उधर ऑलरेडी है उसके पास, लेकिन उसका जो अनुभव उसको साक्षात्कार वो होने के लिए क्या है उसके लिए, लेकिन कुछ करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, अभयम का अनुभव करना पड़ेगा या फिर निर्भय बनना पड़ेगा। और वो अभय कैसे आता है हमारे जीवन में, वो भयभीत, वो भय से मुक्त कैसे होते, वो क्या है, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, है ना, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, वो क्या है, भगवान कृष्ण के बारे में क्या कीजिए, हे मन तुम क्या करो, स्मरण करो, श्रवण कीर्तन करो और सेवा में। तो वही हमारे जीवन में अभय लाया है ना, वो अभयता का अभयता प्रदान किया, किन्होंने किया, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। अभी थोड़ा क्लास और थोड़ा है, क्लास खत्म नहीं। तो ये अभय है ना, श्रील प्रभुपाद जी उनका बचपन से नाम था अभय, अभय बाबू, बाद में अभय चरण, और बाद में श्रील प्रभुपाद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी ने दिखाया कि किस तरह से यह हमारे जीवन में अभयता लाया है ना, नहीं तो हम हमारे जीवन में हमेशा डरे रहते थे। मैं खुद के जीवन में भी जब देखता हूँ कि भयभीत रहता है व्यक्ति कि मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना, जैसे इस जीवन के साथ और जीवन के बाद भी, जीवन के साथ तो ठीक है, जीवन के बाद क्या है ना। बहुत सारे लोग एक्चुअली अगर हम पूछेंगे पैसा कमाते लेकिन क्यों पैसा कमाते, धन कमाते हैं, इतना कमाते लेकिन इसके लिए कि खर्चा ज्यादा होता है इसके लिए, नहीं, खर्चा बहुत कम रहता है लेकिन सबसे ज्यादा वो कमाकर कहां पे डाल देता है, वो पॉलिसीज में या फिर खुद के आगे की सिक्योरिटी के लिए डालता है, जो भय से मुक्त होना चाहता है कि आगे क्या होगा, मेरे साथ इनके साथ क्या होगा, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, तो वो ठीक है। लेकिन अगर कोई कृष्ण भावनाओं में लगा है, कोई भक्ति में लगा है, तो क्या वो थोड़ा प्रयास कर सकता है कि अगर वो इतना समय डाले कि वो जिसमें अपने उधर निर्वाह तो कर सके लेकिन ज्यादा भी क्या ना हो, भयभीत ना रहे कि क्या होगा। अगर वो ऐसे सोचता रहेगा तो हर एक के जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी रहने दो या फिर गृहस्थ रहने दो, वानप्रस्थ या सन्यासी, सबके जीवन में तो भय है कि कभी वो तो एक्चुअली शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु तो आने वाला है। तो तभी तक क्या हम, मतलब जब भक्तों के संग में रहकर और भगवान की भक्ति का अनुभव कर क्या कर सकते, इस भय से दूर जा सकते हैं। जैसे हम भगवान के या फिर भक्तों के संग में आ जाते हैं तो इस भय से हम दूर जाते हैं, है ना, और जैसे भौतिक चेतना में आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, भयभीत रहते हैं। तो ये श्री प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि उन्होंने इस तरह से हमें भक्तों का संग दिया है ना, एक हंसों का संग दिया है। हंस हंस मतलब क्या करते हैं, जो हंस क्या करता है, जिस तरह से कमल के जहां पे रहता है वहां के शुद्ध पानी में वो सरोवर में है ना विहार करता है, और विशेष रूप से क्या करता है, जो कमल की दंडी रहता है उसके साथ खेलने में आनंद लेता है। तो कुलशेखर बोलते हैं कि किस तरह से जिस तरह वो जो हंस है वो कमल दंडी के साथ खेलने में क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है, उसी तरह से मेरा मन क्या हो जाए, ये जो आपके चरण है उसके साथ क्या करे, आपका आश्रय लेकर उसके साथ उसमें आनंद ले, या फिर वह मेरा मन उस हंस की तरह बन जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, भगवान से आकर्षित हो जाए, ना कि भगवान की शक्तियों से। ना बहुत बार मंदिर में भगवान के साथ आते, भगवान बोलते अकामो सर्व कामो वा मोक्ष कामो उधार दी तीव्रे न भक्ति योगे न, तो भक्ति में लगना है तो भगवान बोल रहे कि आप किसी रूप से आ सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर भक्ति में प्रगति करना चाहता है तो उसको अगर भगवान से क्या प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, कृष्ण प्रेम, मतलब शुद्ध भक्ति। हाँ हालांकि उसको उसका साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है, लेकिन भगवान से उसको क्या प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए कि स्वयं भगवान आप कृपया हमें प्राप्त होना चाहिए। क्योंकि एक बहुत सुंदर उदाहरण सुना था कि अगर कोई व्यक्ति है और वो हड्डी लेकर जाता है, मतलब ऐसा हड्डी लेकर ये कर रहा है, तो अगर वो कुत्ते को हड्डी दिखा रहा है तो कुत्ता क्या कर देता है, वो हड्डी से बहुत आकर्षित हो जाता है। तो वो देखता है कि अरे मुझे किसमें आकर्षण हो रहा है, उस हड्डी में आकर्षण हो रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति शेर के सामने जाता है और वो शेर के सामने क्या कर रहा है, हड्डी हिला रहा है, तो शेर हड्डी को नहीं दिखता, वो जो हड्डी डालने वाला है उसको देखता है। तो वो देखता है कि सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिव, अरे हड्डी में क्या है, ये पूरा मौस से बना हुआ व्यक्ति है, वो हड्डी में क्या देखना है ना। तो उसी तरह से भक्त क्या रहता है, मतलब वो कृष्ण कभी कभी जीवन में हड्डियां फेंकते रहते हैं, तो उस तरह से नहीं रहना चाहिए, अरे ये मिल गया, अरे ये चीज प्राप्त हो गया, ये चीज प्राप्त हो गया, नहीं। भक्त क्या करता है, शुद्ध मतलब वो भगवान को देखते रहता है, वो बोले ये मत चीजें दिखाओ, हम किसमें इंटरेस्टेड है, आप में इंटरेस्टेड है, बस आपको छोड़कर और किसमें नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम क्या है, ऐसे भगवान के क्या करें, आश्रय प्राप्त करें और उनके भक्ति में लगे रहिए। अभी मैं इतनी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी, मेरी भी हालत ऐसी है कि उस शेर की तरह नहीं है, उस कुत्ते की तरह ही है, कि थोड़ा बहुत जीवन में थोड़ा सुख शांति मिले तो मैं शांत हो जाता हूँ उन हड्डियों से, लेकिन भगवान की सेवा में जो आनंद मिल रहा है उसको प्राप्त करने में अभी तक प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मैं जो भी बता पा रहा था वो थोड़ा बहुत शास्त्रों के ऊपर या फिर जो जो मैंने सुना है हमारे आचरण से, उसको बस रिपीट कर रहा था। तो मैं उस मशीन की तरह हूँ जो हरे कृष्ण रिपीट कर रहा है, लेकिन उसका अभी तक अनुभव नहीं हो पा रहा है। तो कृपया माफ़ कर दीजिए अगर मैं अपने अधिकार से कुछ ज़्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बस थोड़े बहुत चर्चा कर रहे थे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।